अभी हम सबके बीच में हमारी आदरणीय नलिनी दीदी जी खास बॉम्बे से पधारी हुई है। हम सब पहले करतर ध्वनि से आपका स्वागत करेंगे। आज हम सभी भाई बहने बहुत भाग्यशाली हैं कि बाबा और मम्मा की पालना में पले हुए ऐसे आदि रत्न के द्वारा हमें आज अनुभव की खान प्राप्त होगी। नलिनी दीदी, बचपन से ही साकार बाबा और मम्मा की आपने बहुत पालना ली हुई है और करीबन 53 सालों से आपने अपने जीवन को इस सेवा में समर्पित किया है। 57 सालों से। और अगर शुरुआत की हिस्ट्री में भी हम देखें कि बचपन से ही परिवार के साथ आप ज्ञान में आए और आते ही साकार बाबा ने आपकी विशेषताओं को अच्छी तरह से पहचान लिया और सबसे पहले पहले जो बाबा हम बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि बच्चे हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, तो इसी शिक्षा का जो पहला पहला बाबा ने चित्र बनाया, शायद पुराने भाई बहनों ने देखा होगा, उसमें साकार बाबा ने नलिनी बहन का ही चित्र लेकर के ये तीनों ही शिक्षाएं ब्राह्मणों को दी थी और तभी से यज्ञ में आपकी ये विशेषता बहुत प्रसिद्ध हो गई। कई प्रकार की सेवाओं में आपने देश विदेश में अपनी विशेषताओं से अनेक आत्माओं को लाभान्वित किया है। पूरा परिवार ज्ञान में चलता था और पहले पहले यज्ञ में जब आप समर्पित हुए तो आपके पिताजी ने लौकिक सेंटर, जैसे हम कहते हैं ना, बेटी को दहेज मिलता है, तो इसकी शुरुआत आपके पिताजी ने सेंटर बना करके दी। और फिर तो बॉम्बे के अंदर आपने अपनी विशेषताओं के द्वारा अनेक प्रकार की बाबा की विविध सेवाएं की और वर्तमान समय भी जैसे जैसे बाबा कहते समय बदलता जाता है, समय के साथ साथ सेवाओं को हमें चेंज करना है। तो दीदी जी का हमेशा लक्ष्य रहता है कि आज की जनरेशन को उस हिसाब से सेवाएं देते रहना है। तो खास करके YouTube पर भी दीदी के लेक्चर्स और मुरली आती रहती है और मीडिया विभाग से लेकर के काफी सेवाएं आप टीवी पे और रेडियो टॉक के द्वारा भी देते रहते हैं। सबसे बड़ी विशेषता है कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग कन्याओं को और ब्राह्मण भाई बहनों की अलौकिक पालना करना, ये आपकी एक विशेषता है। ज्ञान को, ज्ञान की गहरी धारणाओं को बहुत सहज रीति से, रमणीकता से कैसे जीवन में लाना, बहुत सुंदर रीति से दीदी सबको देती रहती है। और बॉम्बे में घाटकों पर सब जोन को आप बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। बहुत अच्छा गार्डन भी वहां पर बनाया हुआ है जिससे बाबा की बेहद सेवाएं विकसित होती रहती है। तो आज हम सबके बीच में नलिनी दीदी अपने अनुभव को हमारे सामने रखेगी, तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी आदरणीय नलिनी दीदी को।
ओम शांति, ओम शांति। वैसे तो पूछने की आवश्यकता नहीं है और आशा करती हूँ कि आप जो भी यहाँ पर बैठे हैं सभी अपने प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा के घर में और अपने घर में सभी खुश राजी बैठे हो ना। तबीयत सभी की अच्छी है, तन से मन से दोनों रीति से सब ठीक ठाक हो, बहुत अच्छी बात। ये हमारे अति 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 परम पद्मा पदम सौभाग्य है कि हम बच्चों को स्वयं परम पिता परमात्मा और स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा जो कि शिव बाबा की प्रथम रचना, तो हमें बाप दादा के रूप में मिले और फिर यह भी हमें नशा है कि हम भी इस सृष्टि की जो नव रचना है उस नव रचना की प्रथम रचना प्रभु की। कहते हैं ना, प्रभु को संकल्प आया कि मैं सृष्टि रचूं और उसने सृष्टि रची। नंबर वार वो मूर्तियां बनाते चले गए तो ये वही समय फिर से चल रहा है। ऐसा सभी समझ रहे हो? हाँ, जो ऐसा समझ रहे हैं वो जरा हाथ उठाएंगे। वाह, ये तो सभी निश्चय बुद्धि विजयंती बच्चे, बाबा के लाडले लाडले मीठे मीठे। हाँ, बाबा ये देखकर कितने खुश होते हैं। तो प्रथम रचना हम सभी चैतन्य मूर्तियां बन रही हैं और हम सभी को बनाने वाला कलाकार कौन, रचनाकार कौन, हाँ शिल्पकार कौन? हाँ, यदि इतना ही प्रश्न अपने आप से हम स्वयं से पूछें तो कितनी 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 अंदर में खुशी आती है कि मैं उस शिल्पकार का एक बेनमून बेमिसाल शिल्प हूं। शिल्प अर्थात पत्थर की बनी हुई कोई मूर्ति। तो मुझे स्वयं परमपिता परमात्मा एक ऐसी चैतन्य मूर्ति बना रहे हैं जो सतयुग त्रेता युग के 21 जन्मों तक तो हम पूज्य पुण्यात्मा देवात्मा सतो प्रधान आत्मा तो है ही, परंतु जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तब भी क्या होगा, हम चैतन्य मूर्तियों की पूजा शुरू होगी और वो पूजा अब तक चल रही है। तो इस प्रकार बाबा ने हम बच्चों को कई बार बताया है कि अनादि स्वरूप आदि स्वरूप मध्य स्वरूप और अब अंत में संगम युग पर, और फिर संगम युग पर भी हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, इस प्रकार पूरे ही इस सृष्टि चक्र के अंदर नहीं लेकिन पूरे त्रिलोक के अंदर परम धाम से लेकर के परम धाम सुख्यम वतन और स्थूल वतन, इन तीनों ही वतन में हम बच्चों का जो पार्ट है वह भी अति अति रूहानी नशा चढ़ाने वाला है, क्योंकि पांचों ही स्वरूप में हम क्या हैं, पूज्य हैं। और इसीलिए ये जो संगम युग है, जबकि बाबा हम बच्चों का फिर से रिन्यूएशन कर रहे हैं, फिर से परिवर्तन कर रहे हैं, फिर से युग परिवर्तन हो रहा है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया आ रही है और उसके लिए हम स्वयं भी तैयार हो रहे हैं और साथ साथ हमारे अपने बिछड़े हुए जो सतयुगी सृष्टि की देवी देवता घराने की आत्माएं, जिनको कभी तो बाबा ढूंढकर हमारे सामने ले आते हैं और कभी हम बच्चे ईश्वरीय सेवा के भिन्न भिन्न तरीके अपनाकर युक्तियां रचकर और उन आत्माओं को ढूंढ करके बाबा के घर तक ले आते हैं। और इस प्रकार हम अपने परिवार को एक विस्तृत रूप देते जा रहे हैं और अपने इस परिवार में हम सभी बच्चे मीठे मीठे बाप दादा की श्रीमत का हाथ पकड़ते हुए और मीठे मीठे बाप दादा का साथ पकड़ते हुए और अपने चित्र और चरित्र को जो हमने लक्ष्य पकड़ा है उसके लक्षणों को हम धारण करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मीठे मीठे बाप दादा ने हमें कर्मों की भी इतनी गुह्य गति समझा दी है कि हम किस पुरुषार्थ से किस प्रालब्ध को पाएंगे, अर्थात भविष्य राजधानी जो स्थापन हो रही है वहां हम किस पद पर स्वयं को स्थित कर सकते हैं, किस पुरुषार्थ से। बाबा रोज रोज मुरली के अंदर हमें कर्मों की गहन गति और किए हुए जो भी पूर्व जन्मों के या इस जन्म के छोटे बड़े पाप या छोटी बड़ी भूलें जिनकी हम माफी नहीं मांग सके, और यदि माफी मांगी है तो हमने उसका परिवर्तन नहीं किया है, या फिर हमने अपने बाबा के पास उसको सत्य रूप में रखा नहीं है, या हमारे निमित्तों के आगे भी हमने सच बोल करके और अपने इन भूलों को पापों को प्रत्यक्ष नहीं किया है, तो ऐसी जो भी हमारी छोटी बड़ी भूलें छोटे बड़े पाप, हम बच्चों को ये एक बहुत 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 बड़ा मौका मिलता है कल्प के अंदर। भक्ति मार्ग में तो हम कहते आए कि मुझ निर्गुण हारे में को गुण नाहीं, आप ही तरस परोई, या फिर मैं तो नीच पापी कपटी कामी लोभी क्रोधी मोही, लेकिन आप हमें क्षमा करना, आप हमारे ऊपर दया दृष्टि रखना, आप कृपा करना, आप रहम करना, आप दुआ करना। तो हम गाते आए कहते आए और प्रभु को याद करते आए और कहूं एक बात, स्वयं को ठगते आए, प्रभु को भी ठगते आए, मित्र संबंधी साथी स्नेही उन्हों को भी ठगते आए, झूठ बोलते आए, झूठ बुलवाते आए, भूले करते आए, भूले करवाते आए, पाप कर्म करते आए, पाप कर्म करवाते आए, चोरी भी करते आए, चोरी भी करवाते आए, क्या क्या नहीं किया होगा कल्पना ही कर लो। क्योंकि जो सबसे नंबर वन पुण्यात्माएं कर्मों की गहन गति और सृष्टि चक्र का ड्रामा का राज कहता है कि जितनी पुण्यशाली आत्मा उतनी ही पतित आत्मा। सुख भी सर्व से अधिक हम ही देखते हैं और दुख भी अधिक हम ही देखते हैं। और इसीलिए मीठे मीठे बाप दादा, जितना हम बच्चों को प्यार करते हैं उतना प्यार औरों को नहीं मिलता, क्योंकि औरों ने वो संबंध भी नहीं जोड़े। भगवान कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, अल्लाह कहा, खुदा कहा, लेकिन वो जो नाता है, जो नाता हम बच्चों ने बाप के साथ जोड़ा है, तो हम बच्चों ने सर्व संबंध जोड़े हैं उनके साथ। कोई कोई ने सर्व संबंध जोड़े हैं तो कोई कोई ने जिसको जिस संबंध की कमी महसूस हुई, जिस संबंध से उसका वह रस और प्राप्ति नहीं हुई या कम हुई, तो उस संबंध से बाबा को याद करते हैं। और जितना जितना हम अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखते हैं, एकाग्रता के साथ बाबा को याद करते हैं, जितनी जितनी हमारी मन की लगन प्रभु में अगन की तरह वह प्रज्वलित होती है, उतनी उतनी हमें शक्तियां प्राप्त होती हैं, उतने उतने हम अपने विकर्मों का भी विनाश करते और जो भी विघ्न के रूप में माया हमारे सामने भिन्न भिन्न अपने विकारों को हमारे सन्मुख ला करके युद्ध करवाती है, तो हम उस युद्ध में विजयी बनते हैं। परंतु सर्व संबंधों से जो बाप को याद करते, या फिर वह परम पिता है, परम शिक्षक है और परम सतगुरु है, यदि यह मुख्य संबंध से हम बच्चे बाबा को याद करते हैं, तो हमें बाबा से क्या मिलता है ये भी हम सब जानते हैं। परंतु यदि श्रीमत पर हम बच्चे नहीं चले तो भी क्या प्राप्ति होगी वो भी बाबा बताते हैं, बाबा वो भी याद दिलाते हैं कि समय आएगा बहुत पछताना पड़ेगा और फिर वह समय ऐसा समय होगा जब बाप भी हम बच्चों को उस संबंध से नहीं देखेगा। भक्ति में भक्त और भगवान का संबंध और संगम पर हम बच्चे और पोतरे दोतरे और हमारा वो बाबा दादा, इस संबंध से प्रॉपर्टी के हकदार और बालक सुमालिक, बाबा तो यहां तक कहते तो मालिक के भी मालिक हो, और भविष्य के भी हम राज्य अधिकारी बच्चे, लेकिन यदि श्रीमत नहीं मानते तो फिर बाबा कहते हैं मैं, मेरा दूसरा रूप धर्मराज भी है, और जब धर्मराज के रूप में मैं हूं तब फिर बाप के रूप में वो हम बच्चों को नहीं देखता। हम कितना भी रोएंगे, कितना भी गिड़गिड़ाएंगे, कितना कुछ हम माफी मांगेंगे, लेकिन जब वह धर्मराज के रूप में होंगे तो वो हमारी एक भी नहीं सुनेंगे। तो हमें ये बहुत बड़ा मौका है कि हम संगम युग पर, द्वापर युग से लेकर के जो कुछ भी गलत गलत करते आए, हमें प्रभु के सामने अपनी गलतियों को रखने का एक मौका मिला है और हम उन गलतियों को सामने रख करके और आधा माफ भी करवा सकते हैं। बाबा कहते हैं ये तुम्हें फायदा है कि यदि तुम अभी सच बता देते हो तो मैं तुम्हें आधा माफ कर देता हूं, बाकी रहता है आधा। तो कुछ मैं योग आप बच्चे लगाते हो तो एक बाबा की ही याद ऐसी पावरफुल याद है जिससे हमारे विकर्मों का विनाश होता है। बाकी संसार के अंदर या इन तीनों ही लोकों में कोई भी मनुष्य आत्मा, महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, धर्मात्मा या फिर देवात्मा, कोई भी आत्मा की याद में ये ताकत नहीं है कि हम उनको याद करें और हमारे विकर्मों का विनाश हो। हाँ, उन महान आत्माओं को याद करने से, श्रेष्ठ आत्माओं को याद करने से, पुण्यात्माओं को याद करने से, देवात्माओं को याद करने से हमें थोड़ी बहुत खुशी की, सुख की या अल्पकाल की कोई प्राप्ति की इच्छा, वो हमारी पूर्ण हो जाती है। कुछ हमने वरदान मांग लिया, वो वरदान मिल जाता है, लेकिन हमारे विकर्मों का विनाश हो, हम पापों से मुक्त हो जाएं, ये नहीं हो पाता। तो हम सभी मधुबन धरनी पर बैठे हैं, अपनी भूमि पर, अपने मात पिता की और विशेष बाप दादा की कर्म भूमि, जहां स्वयं बाबा हम बच्चों को परम शिक्षक, परम पिता और परम सतगुरु के रूप में हम बच्चों को मिलते हैं, पढ़ाते हैं और मुक्ति की युक्तियां सुनाते रहते हैं, तो क्यों नहीं हमें इसका पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। अतः यहां आए हैं, हम उसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। भले ये कुंभ मेला है, जिस कुंभ मेले की यादगार वो नदियों पे और समुद्र नदी के मिलन के तट पर लगता है, लेकिन सच्चा सच्चा यही कुंभ मेला है जहां मिलना तो होता ही है, लेकिन याद रहे कहीं हम आपस में इतने बड़े बेहद, बाप के बेहद के और अपने बेहद के परिवार में, अपने बेहद के भाई बहनों को, जो हम बिछड़े हुए कहां कहां थे, जो आकर के यहां सब सम्मिलित हुए हैं, यहां मिलते हैं, तो हमें अंदर में अपार खुशी हो रही है। कोई कहां से है, कोई कहां से, कोई पूरब से, कोई पश्चिम से, कोई उत्तर से, कोई दक्षिण से, तो कितनी खुशी होती है एक दो को देखते हुए। लेकिन ऐसा न हो कि हम आपस में मिलते मिलते हम जो बाबा से लेना है, यहां हम जो अपनी झोली भरने आए हैं, वो झोली भरना हम भूल जाएं, या हम कहीं अपने परिवार को मिलने में उसको अवॉइड करें या डोंट केयर करें, अर्थात जो भी हमारे क्लासेस चलते हैं, जो भी हमें यहाँ प्राप्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से हमारी दादियां, मधुबन निवासी आदि, जो भी हमारे लिए उन्होंने रखा हुआ है, हम उसको मिस करें। इसलिए हम सभी खूब यहाँ आए हैं तो बस एक ही धुन में रहें, अमृत वेले से लेकर रात्रि के सोने तक मुझे कोई क्लास मिस नहीं करना है। मुझे कोई मेडिटेशन का प्रोग्राम मिस नहीं करना है। बाकी मिलना तो आते जाते हम करते ही रहेंगे, तो इसीलिए खूब यहाँ आप आए हो, खूब अच्छी तरह से आप लाभ उठाएं, खूब अपने परिवार से मिलें जुलें, और भले हम कुछ पल के लिए मिलें, लेकिन बस ऐसे मिल लें जो हम कभी न जुदा थे न जुदा हैं और ना ही कभी जुदा होंगे, उसकी साबिती है ये संगम योग। अगर हम जुदा होते तो आज हम सभी का संगम पर ये मधुर मिलन न होता। आज हम जिसको भी देखते हैं बाबा दिखाई पड़ता है। शायद यहाँ से ही सर्वव्यापी की गलत फहमी सभी के अंदर पड़ गई, क्योंकि जिस भी बच्चे को देखे उसके नैनों में, उसके मस्तक में, उसकी बातों में, उसकी चलन में कौन दिखता है? हाँ, बाबा ही बाबा। हाँ, ऐसा अनुभव कर रहे हो? हाँ, क्योंकि जो भी रचना है वो किसकी है? बाबा की। अच्छा, तो खूब आनंद ले, मंगल मिलन भी मनाए, और फिर बाप दादा को भी तो मिलेंगे। तो सभी बहुत बड़ी आस लेके आए हैं, और ड्रामा को भी हम सभी बच्चे अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए ड्रामा की सीट पर सेट होकर के जो हमारे सामने पाठ आता जाए हम बड़ी खुशी खुशी के साथ प्ले करते चले जाएंगे। और ये संगम युग मौजों का युग है, मधुबन में आके वैसे ही सब बहुत मौज मनाते हैं। मना रहे हो ना मौज? हाँ, सब मौज मना रहे हो ना? बस मौजों का युग है, मौज मनाते चलें, हाथ में हाथ देते हुए, बाबा का साथ पकड़ते हुए, बस बेफिक्र बादशाह होके आगे बढ़ते चले, बढ़ते चले, इतना बढ़े कि आखिर प्लेन फास्ट तीव्र गति पे उड़ने पर आता है ना, तो फिर जमीन छोड़ देता है। बस उड़ते रहें और ओम शांति।